بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرق المغربين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد
صل على محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم اعلی مظلوم کربلا حسین ابن علی حل میں ناصر علی انصرنا صلی محمد مختار نامے کے عنوان پر یہ چوتھی تقریر ہے کورٹ مسجد سے اور امام کا یہ جملہ کہ جو کون ہے جو میری مدد کرے یہ جناب مختار کے حالات میں بالکل پورا اترتا ہے کہ مختار نے ایسے موقع پر جا کر اسلام کی مدد کی اور امام حسین کے خون کا بدلہ لیا. ایکچولی یہ جو بدلہ مختار نے لیا یہ پورا بدلہ نہیں ہوا, جو ریونج لینا تھا نا یہ پورا ریونج نہیں ہوا. اصل جو بدلہ لیا جائے گا وہ تو انشاءاللہ جب امام حسین کے بیٹا ظہور کرے گا تو اس کے بعد ہی جو ہے جو خون کا بدلہ لیا جائے گا وہ تو امام زمانہ انشاءاللہ لیں گے. لیکن یہ صرف مختار نے لیا تو کم از کم دل کو سکون پہنچا ہے والے, اور مختار کا جو یہ کام تھا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا بالکل, اس لیے کہ ایسے حالات میں ایسے ماحول میں مختار نے آگے بڑھ کر ریونج لیا کہ اس زمانے میں شیعیت بالکل ختم ہو رہی تھی, لوگ اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. کل آپ نے دیکھا کہ وہاں کا ایون کوتوال جو تھا جو پورے وہ پریزنس کا جو انچارج تھا جیل کا جو انچارج تھا وہ خود اپنے مذہب کو چھپایا ہوا. دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ وہ 72 ایئرس کا وہ شخص مولم عامر ابن عبداللہ وہ بھی اپنے مذہب کو چھپائے تھے. ایسے کئی لوگ تھے کہ جو شیعت کو چھپا کے صرف خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, تقیے کے عالم میں تھے. تو ایسے ماحول میں بدلہ لینا, اور اس وقت حکومت مختار کی نہیں تھی نہ کوئی چاہنے والے کی تھی, کہیں پورے عراق میں پورے غلط میں مختار صرف یزید کی حکومت چل رہی تھی. تو ایسے موقع پہ اور یزید اس وقت شام کا حاکم تھا, جب مختار نے بدلہ لیا وہ تو بعد میں لیا لیکن پہلے تو یزید کی پوری حکومت تھی, اور یزید پوری اپنے زبردست زور کے ساتھ ظلم کے ساتھ کام کر رہا تھا. وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایک بھی امام حسین کا چاہنے والا اگر رہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا. تو بڑے بڑے لوگ کوفے میں اور دوسرے مقامات پہ اپنے مذہب کو چھپا کے اپنی زندگی کو چلا رہے تھے. ایسے پراشو ماحول میں اگر کوئی ریوولٹ کرتا ہے کوئی اٹھتا ہے تو اس کا مقام امام کی بارگاہ میں کتنا ہوگا. اس لیے کہ معصومین چوتھے امام اور خاندان اہل بیت مدینے میں ہیں, ہر طرف دشمن ہے. ہر ایون مدینے میں عبداللہ ابن عمیر جو ہے عبداللہ ابن زبیر زبیر کا بیٹا جو ہے وہاں کا گورنر تھا. کون ہے زبیر؟ یہ طلحہ اور زبیر یہ جو دو ام المومنین حضرت عائشہ کی جو نیبیوز تھے, یہ دونوں عبداللہ زبیر اور طلحہ جو جنگ جمل میں مولا کے خلاف آئے تھے, تو یہ اس کا بیٹا وہاں پہ جو ہے حکومت کر رہا تھا. وہ بھی یزید کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ مطلب حالات ایسے تھے پورے مسلمان کے ملک کے کہ یزید شام میں حکومت کر رہا ہے اور ہر طرف جو ہے یہی دشمنی پھیلی ہوئی. مطلب اس وقت یہ حالت تھی کہ کوئی یہ نہیں بول سکتا تھا کہ یہ گھرانہ شیعہ کا ہے یا یہ گھر, جو بالکل سامنے آ رہے تھے کہ یہ شیعہ ہے تو اس کو لے کے جاتے تھے جیل میں ڈال دیتے. ابن زیاد نے جیسے میں نے کہا کہ 5,900 بہت ہوتے پوروں کو جیل میں ڈال دیا کہ کوئی کہیں سے بھی آواز نہیں نکلے, کہیں سے بھی ریوولٹ نہ ہو. ایسے موقع پر مختار نے جو کام کیا وہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے, بہت بڑا اچیومنٹ ہے, اتنا بڑا اچیومنٹ ہے کہ امام کے دل کو سکون پہنچا, امام مسکرائے, خاندان اہل بیت کو سکون پہنچا. مختار اس شخصیت کا نام ہے. کبھی بھی آپ کے سامنے اگر ایسا آیا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ بھی بامبے میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو جناب مختار کے اس ریولوشن کے خلاف ہیں, لیکن لیک آف نالج میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کتابوں کو پڑھنا چاہیے کہ کوئی, جس لیے کہ مجھ سے آگے کہا گیا کہ مختار جو ہے پھر امام راضی نہیں تھے. مختار سے امام راضی نہیں تھے تو پھر امام مسکرائے کیوں؟ پھر امام نے عید کیوں کیا؟ پھر امام نے دل کو سکون پہنچا بلکہ یہ کیوں کہا, پھر امام نے جو ہے یہ کیوں کہا کہ مختار کے عمل سے ہم راضی ہیں, پھر رسول اللہ مولا علی بار بار بچپنے میں مختار کو پیار کر رہے ہیں, مختار کو کہہ رہے ہیں کہ مختار یہ ہے کہ جو میرے حسین کے خون کا بدلہ لے گا. بہرحال دشمن اور لوگ بھی تھے کہ جو تاریخ لکھنے والی, تاریخ میں ہر چیز ہے. ایک چیز میں آج بتاؤں, جو ہسٹری ہے نا ہماری اس میں کانٹے بھی ہیں پھول بھی ہیں, کانٹے بھی ہیں پھول بھی ہیں. ہم کو چاہیے کہ کانٹوں کو چھوڑیں پھول کو لیں. ہم دیکھیں کہ علماء کیا کہتے ہیں, سید نور اللہ چشتی کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے, شہید تاریخ اتنا بڑا ہمارا عالم ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا, اللہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا, مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مختار نے جو ریولیشن مختار کا تھا اس کی وجہ سے آج شیعت مستحکم ہوئی ہے, مضبوط ہوئی شیعت. ورنہ یہ جتنے دشمن تھے, ابن گیا جیسا ظالم, شمر, برملا, عمر اسعد, یہ بڑے بڑے جو سورمان اپنے آپ کو سمجھ لیتے, ان سب کا خاتمہ کیسا ہوتا, ان سب کو ختم کون کرتا؟ لازم تھا کہ مختار کا اٹھنا. لیکن مختار سے پہلے ایک اور ریولیوشن ہوگا, آج اس کا ذکر ہوگا, کہ جب عامر نے وہ خط اور پیپر بھیجا اور مختار نے لکھ کے بھیجا واپس عبداللہ ابن عمر کو, اور عبداللہ ابن عمر نے یزید سے ریکمینڈ کر کے ابن زیاد کو بھیجا. بات کل یہاں تک آئی تھی کہ یزید نے ریلیز کا ایک لیٹر ابن زیاد کو بھیجا. جب ابن زیاد کو یزید نے بھیجا اور مختار اوپر آئے یزید ابن زیاد کے پاس, تو ابن زیاد نے یہ کہا کہ مختار آج میری زندگی کا سب سے خراب دن ہے, میں جانتا ہوں کہ تو میری موت کا سبب بنے گا. ابن زیاد خود کہہ رہا ہے تو میری موت کا سبب بنے گا, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا اس لیے کہ یزید کا لیٹر آ گیا اور میں تجھے ریلیز کرتا ہوں, لیکن ایک شرط پر ریلیز کرتا ہوں کہ تین دن تک کوفے میں رہنا, تین دن کے بعد اگر کوفے میں تو نظر آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. مختار مسکرانے لگے, کہا کہ میں تین دن سے زیادہ کوفے میں رہوں گا بھی نہیں, میں چلا جاؤں گا. دوسرے دن ابن زیاد پورے مسلمانوں کو دار الاسلام مسجد میں بلواتا ہے, مسجد کوفہ میں بلا کر ایک تقریر کرتا ہے, تقریر کر کے کہتا ہے کہ میں جتنے حسین کے جانے والے کوفے میں ان کو میں ختم کر دوں گا, اور اس کے بعد امام حسین اور حضرت علی کے خلاف تو جملے اس نے بیان کیے. تو مختار اپنے مقام سے, مختار سے پہلے ایک اندھا صحابی اٹھا جو بالکل بلائنڈ تھا, اس نے کہا کہ ابن زیاد تو یہ کیا بکرا ہے, یہ تو کیا باتیں کرتا ہے, تو حسین کے خلاف باتیں کرتا ہے. ضعیف صحابی تھا, یہ پلٹ کے اس نے اس سے وہ ضعیف سے کہا کہ دربار سے باہر چلا گیا, دربار سے باہر گیا, اپنے گھر گیا. گھر گیا, اس کی ایک بیٹی تھی, اس بیٹی نے جیسی باپ کو دیکھا رونے لگی اور سینے سے لگی, کہتی ہے کہ بابا مجھے معلوم ہوا ابھی کہ ابن زیاد نے آپ کو دربار سے باہر نکالا, میں ڈر رہی تھی کہیں ابن زیاد آپ کو ختم نہ کر دے. تو ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ یہ جیسے ہی گھر جائے دس بارہ آدمیوں کو بھیجتا ہے نیزوں کے ساتھ, اور نیزے بہت ہی خطرناک چیز ہوتے تھے, نیزے سے انسان کے سینے سے نکال کے باہر کر دیتے تھے, نیزا بہت شہزاد نیپل نشانت نیزے سے ہوئی تھی, اتنا شارپ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو پھینکتے تھے نیزا, نیزا مطلب 100 میٹر 200 میٹر وہ لوگ نیزا پھینکتے تھے, اور وہاں پہ اس کا اس کے ماہر ہوتے تھے, نیزے جیسا تیر چلانے والوں کے ماہر ہوتے تھے, جیسا ہرملا, ہرملا عرب کا سب سے بڑا تیر انداز, سب سے بڑا تیر انداز تھا, اس لیے کہ ان لوگوں کے جو تیر پھینکتے تھے ان کے ان لوگوں کے آرمس الگ الگ چلتے تھے, مطلب ایکسرسائز اتنی کرتے تھے, اور تیر کا نشانہ جیسا گولی کا نشانہ ہر آدمی نہیں کر سکتا, ادھر ادھر ہو جائے گی, اتنا ایکوریسی ہوتی تھی, اتنی ایکوریسی کہ فارمولا کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواریں, لوہے کی جو میٹل کے والز, اگر 7 والز بھی ہو جائیں تو اس میں سے مارتے ہوئے اس کا تیر باہر نکلتا, اس کے ہاتھ کی اتنی طاقت تھی. عرب میں سب سے بڑا تیر انداز ہوتا ہے, معصومین کو چھوڑ دیں, مظلوم امام ان لوگوں کو چھوڑ دیں, ان لوگ تو خدا کی شان تھی, لیکن یہ جو تیر چلا تھا ہرملا تیر انداز میں مشہور تھا, اسی لیے یزید نے جو کربلا میں جو جمع کیا تھا نا لوگوں کو, بالکل جو سب سے ماہر, کوئی تیر چلانے والوں کا ماہر تھا, کوئی نیزے پھینکنے والوں کا ماہر تھا, کوئی بچی پھینکنے والے کا ماہر تھا, کوئی تلوار چلانے والے, تلوار چلانے والے نیزا نہیں چلاتے تھے, ان کا تلوار کا اس اسٹائل سے کرتے تھے کہ اگر ہر طرف سے تیر بھی آ رہے تو وہ تلوار سے روکتے تھے, تلوار سے روک کے آگے بڑھ جاتے تھے, اتنے ماہر ہوتے تھے, اس لیے کہ یہ فن تھا, یہ فن تھا جو اس وقت لوگ بچپنے سے اپنی اولاد کو سکھاتے تھے, اور اس کے اوپر اس بندے کا ریٹ لگتا تھا اس زمانے میں. ریٹ کیسا لگتا تھا کہ تیر انداز ہے, اگر یہ ہمارا ساتھ دے گا, یہ ہماری جنگ میں آئے گا تو اس کو اتنا ہمارا اتنا فائدہ ہوگا. تو اس فن کے اوپر اس کو فن کیا مطلب, آپ انگریزی میں جس پروفیشن ہے اس کا پروفیشن ہی ہوتا کہ تیر انداز کرنا, اور کوئی کام نہیں کر رہا. اس میں اس کو مل رہا پیسہ, لاکھوں روپیہ مل رہا, حکومت اس کو خریدتی تھی ایسے لوگوں کو. تو یہ جو ہے اس نے 7 یا 10 نیزہ پھینکنے والوں کو ابن زیاد نے زیل کے گھر پہ بھیجا اندھا. اس کی ایک آنکھ جو ہے جنہیں جمل میں گئی ان کی, اور ایک آنکھ دیکھنے سے پھینک گئی. جب دونوں آنکھیں چلی گئی تو یہ شخص, ان کا نام عبداللہ ابن وائل تھا, یہ آئے آ کے مولا سے کہنے لگے, مولا میری دونوں آنکھیں چلی گئی اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی محبت میں جان دوں اور میں شہید ہوں. آنکھیں چلیں گی اب تو میں جنگ بھی نہیں کر سکتا. تو علی نے کہا کہ کب کا صفین جمل میں ایک آنکھ گئی, جنگ جمل میں, جنگ صفین میں. تو مولا نے کہا کہ عبداللہ ایک وقت آئے گا کہ تم میری محبت میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو اس نے کہا مولا میری تو آنکھیں چلی گئی, میں لڑ کیسے سکتا, میں تو بلائنڈ ہوں. علی نے کہا نہیں, وقت آئے گا, تم انتظار کرنا. صفین کے بعد کربلا ہوگی, کربلا کے بعد 2 سال کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب میں گھر پہنچا تو 10 ابن زیاد کے لوگ نیزہ اور تلوار لے کر میرے پاس آئے. میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ میں جنگ کرتا ہوں شہید ہوں, لیکن اب میں جنگ تو نہیں کر سکتا. بیٹی تم مجھے بتا سامنے سے کون آ رہا ہے تو میں تلوار لے کر اس کو ماروں, یہ بتا پیچھے سے کون آ رہا ہے تو پیچھے سے بتاؤ. تو بولتے جا, میں کدھر سے دشمن آ رہا ہوں ادھر سے لڑوں گا. یہ 10 آدمی آئے, 10 کو انہوں نے اندھا ہے امام کا چاہنے والا, 10 کو قتل کیا. پھر ابن زیاد نے 50 آدمی کو بھیجا. یہ عبداللہ ابن وائل کوفے میں اپنے گھر کے سامنے مولا کا وہ جملہ آج سچا ہوا کہ جو سامنے سے آ رہا تھا, بیٹی پکار کے کہہ رہی تھی کہ بابا سامنے سے دشمن وار کر رہا تھا, سامنے سے وار کرتے تھے, سائڈ سے آ رہا تھا سائڈ سے کہتے تھے. اسی طرح انہوں نے روایت میں کہ 40 دشمنوں نے حسین کو وہاں پہ قتل کیا, اس کے بعد یہ شہید ہو گئے. ان کے بعد مختار 3rd دن نکل کے سیدھا مکہ آئے, مکے میں آئے, زیارت کی. یہاں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی. عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا کہ مختار جو ہے وہ مکے میں, تو ملاقات کرتا ہے, کر کے بولتا ہے کہ مختار میں تیرا ساتھ دینے تیار ہوں. مختار نے کہا مجھے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے. پھر وہاں سے پلٹ کر یہ چوتھے امام کے پاس آ کر امام حسین کا پرسا دیا, اس لیے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا مختار جیل میں تھے, تو پہلی دفعہ چوتھے امام سے مختار کی ملاقات ہوئی. آئے, آ کے پرسا دیا, اور پرسا دے کر کہا مولا کیا میں آپ کے بابا کے خاطروں سے بدلا لوں؟ تو امام نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے چچا جو محمد حنفیہ ہے ان سے اجازت دے. کیوں کہا امام نے یہ پوائنٹ پہ لوگ کہتے ہیں کہ امام راضی نہیں تھے. کیوں کہا امام نے؟ اس لیے کہ امام کے پاس حکومت کے جاسوس بیٹھے ہوئے تھے, امام ڈائریکٹ پرمیشن نہیں دے سکتے تھے اس وقت. تو انہوں نے اپنی پوری وکالت, جیسے آغائے شستانی وکیل کو بناتے, اپنی اسی طرح انہوں نے اپنا وکیل اپنے چچا محمد حنفیہ کو بنایا. محمد حنفیہ اس وقت طائف میں تھے. محمد یہ کہا امام نے مختار کو, مختار وہاں سے نکل کر طائف آئے. طائف آئے, جناب محمد حنفیہ سے ملاقات ہوئی, ملاقات کر کے یہ واپس چلے. اب یہ بڑے طائف میں مختار واپس گئے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مختار طائف میں ہی تھے. اب میں اس کو یہاں روکتا ہوں, اب ہم واپس کوفہ چلیں گے کہ کوفے میں کیا ہوا, مختار کے نکلنے کے بعد کوفے میں کیا ہوا. اس لیے کہ ابھی ابراہیم ابن مالک اشتر, مالک اشتر جو مولا کے بہت بڑا چاہنے والا تھا, ان کا بیٹا ابراہیم, ابراہیم کا جناب مختار کے ساتھ خاتلہ نے حسین کو قتل کرنے میں بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. ابراہیم ابن مالک اشتر وہ ہے کہ جو مختار کی آرمی کے کمانڈر چیف تھے, اور یہ مالک اشتر جیسی شخصیت کے بیٹے تھے. یہ بھی بہت بہادر تھے, بے انصاف بہادر تھے. یہ واپس کوفے میں گئے, مت کون گیا, ہم کوفے چلتے ہیں. اسی زمانے میں یزید جو ہے واسل جنگ, یزید ختم ہوا. یزید جیسی ختم ہوا, کوفے والوں کو معلوم ہوا کہ یہ تھا ابن زیاد گورنر ہے بصرے کا, کوفے کا. ابھی بصرا بھی ٹرانسفر ہوتا ہے, 6 مہینے بصرے میں رہتا ہے, 6 مہینے کوفے میں رہتا ہے. تو اس زمانے میں ابن زیاد کوفے میں نہیں تھا. ابن زیاد جب یزید واسل جہنم ہوا تو ابن زیاد بصرے میں تھا, کوفے میں اس کا بھائی گورنرشپ کر رہا تھا. کوفے کے جو مومنین تھے, جب پتا چلا کہ یزید مر گیا, یزید 3 سال یا 4 سال کے بعد 64 یا 65 ہجری, 61 میں کربلا ہوا, 65 ہجری, جب معلوم ہوا تو کوفے میں سب سے پہلے کیا ہوا, جتنے لوگ تھے उन लोगों ने उस वहां का जो हाकिम था, गवर्नर था, उसको मारा। रिवोल्यूशन आया, लोकल रिवोल्यूशन जिसको आप कहेंगे, वो आया और आकर उन्होंने सबसे पहले जेल के दरवाजे खोले, जेल के दरवाजे खोले, जेल को तोड़ा तो प्रिजन में से पूरे लोग वापस बाहर, उसमें आने वालों में पूरे सुलेमान खजाई है, इब्राहिम इब्ने मालिक एस्तर है, कुमैल इब्ने ज़ियाद है और दूसरे जितने मौला खिंचाने वाले थे सब बाहर है। जब ये लोग बाहर आए तो इब्राहिम की एज उस वक्त 93 ईयर्स की थी। इब्राहिम 93 ईयर्स का रसूलुल्लाह का साथी, मौला अली का साथी, उसको उसने जेल में डाल दिया। तो ये जो शख्स, इनका नाम था इब्राहिम और इनके दूसरे जो साथी थे वो थे सुलेमान इब्ने खजाई, सुलेमान इब्ने। अच्छा हैरत होगी, सुलेमान फतेह मक्का के वक्त रसूल के साथ थे, रसूल अल्लाह ने सुलेमान को सुलेमान नाम दिया था। इनका एक मिशन था सुलेमान, सुलेमान ने यह कहा था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आज से मेरे ऊपर, देखिए उनके जुमले देखिए, आज से मेरे ऊपर मेरा खाना हराम है, इतना खाना खाऊंगा, इतनी गिजा लूंगा, मिसाल के तौर पर अगर एक रोटी की जरूरत है मेरे जिस्म को जिंदा रहने के लिए तो मैं एक ही रोटी खाऊंगा, मैं पूरा डिलिशियस पूरा फूड ऐसा नहीं खाऊंगा, 10 साल 5 साल ऐसा नहीं खाऊंगा, मैं उतना ही खाऊंगा जितना मेरे जिस्म की जरूरत है। आज से मैंने अपने ऊपर खाना हराम किया, ठंडा पानी हराम किया, ये हवा हराम किया, उस वक्त तक जब तक मैं इब्ने ज़ियाद का से हुसैन के खून का बदला नहीं लेता। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं लेता, न शिमे ना उमर साहब ना दूसरे, मुझे इब्ने ज़ियाद को पकड़ना है, इब्ने ज़ियाद को मारना है। क्यों? इब्ने ज़ियाद की वजह से ये वाकया करबला हुआ, वो इंचार्ज था पूरे वाकया करबला का, तो हमको बदला लेना है इब्ने ज़ियाद। और इब्ने ज़ियाद उस वक्त बसरे में, इन्होंने क्या किया, 10 तकरीर की कूफे में, इसलिए कि कूफे के हालात बिल्कुल खराब हो गए, बिल्कुल नफसा नफसी है, लोग अपने अपने घरों में, गवर्नरशिप नहीं है, यदि वासीला जहन्नम हो गया, इब्ने ज़ियाद बसरे में बैठा हुआ है, कूफे के हालात बदलते जा रहे, जितने शिया ने अली से जेल में से बाहर आ गए, अब थोड़े से हालात यहाँ सही हुए। सुलेमान खज़ाई ने तकरीर की मस्जिद में, मस्जिद में तकरीर की और कहा कि देखो हुसैन शहीद हो गए, हम जेल में थे, अगर हम रहते तो हमारा नाम भी वो लिस्ट में था जो करबला वालों के साथ था, लेकिन हम अब नहीं है, अब हमको चाहिए कि हम अब उस लिस्ट में वापस जाएं, हमारा नाम फिर वापस आए कि हम खून हुसैन का बदला लें। आज जो हम जा रहे थे वालिदा में फया रहते नहीं, खुद तो माकुम फाफूजा माकुम कहते ना, उसका पहला जवाब सुलेमान खज़ाई ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, इसलिए नहीं रहना चाहता, मुझे खून हुसैन का बदला लेना है, और खून हुसैन का बदला इसीलिए लेना है कि इमाम हुसैन शहीद हो गए और इब्ने ज़ियाद अभी भी जिंदा है, पूरे खातिर जिंदा है, हमको इब्ने ज़ियाद से खून का बदला लेंगे। तो लोगों ने कहा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ मुख्तार में और सुलेमान खज़ाई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तारीफ में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या हुआ, मुख्तार ये कह रहे थे कि मैं पूरी, हम एक आर्मी को जमा करेंगे 1,50,000 1,00,000 जमा करके हम खून हुसैन का बदला लेंगे, हम 5,000 10,000 आदमी से हुसैन के खातिरों से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सुलेमान खज़ाई ये कह रहे थे कि मुझे जिंदा रहना नहीं है, मुझे मरना है। यहाँ मौला अली का जुमला है, मौला अली कहते हैं कि अगर जितना तुम मौत से डरोगे ना, मौत तुम्हारे पीछे आएगी, अगर तुम मौत के ऊपर काबू पा जाए तो मौत पीछे जाएगी, तुम आगे चलते। ये मौला अली कहते हैं, तुम मौत से डरोगे तो मौत तुम्हारे पीछे लगी रहेगी, तुम मौत से डरोगे। तो सुलेमान ने वही कहा, मुझे डरना नहीं, मुझे जिंदा रहना नहीं है, मुझे बदला लेना है इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन के खातिरों से। इन्होंने तकरीर की, 10,000 आदमी को जमा किया, 10,000 की आर्मी जमा की। मुख्तार ने इनका साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया मतलब सब जाके इनकी आर्मी में ज्वाइन नहीं किया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। वो चाह रहे थे कि पूरी आर्मी को जमा करके बदला लें एक साथ, वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि सामने यजीद के पास और इब्ने ज़ियाद के पास 2,00,000 3,00,000 की आर्मी है, हम 10,000 आदमी जाके कुछ नहीं करेंगे। पर इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लड़ना है। सुलेमान ने पहला रिवोल्यूशन जो वाकई करबला के बाद पहला इंकलाब जो खून हुसैन का बदला लेने के लिए किया, वो सुलेमान खज़ाई ने 10,000 आर्मी को लेके तकरीर करने के बाद जब जमा हो गए तो इन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जाते, सबसे पहले हम खबर हुसैन को जाएंगे, ज्यारत इमाम हुसैन, ज्यारत इमाम हुसैन की नियत से कूफे से 10,000 आदमी चले। रिवायत में है, आप यकीन करें, रिवायत में ये वाकया है 65 हिजरी का, 61 में वाकया करबला हुआ, 61 से 65 4 साल में लोग गए ज्यारत को, जैसे जावेद इब्न अब्दुल्लाह अंसारी गए और कई लोग गए, लेकिन रिवायत में है कि लोग जाते थे ज्यारत करते थे वापस आते थे। जब सुलेमान खज़ाई गए तो सुलेमान 10,000 आदमी को लेके, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं इमाम हुसैन की खबर की ज्यारत करूंगा, फिर वहां पर अहद करूंगे, हम खसम गाएंगे और फिर निकलेंगे हुसैन के खातिरों से बदला लेंगे। तो रिवायत में है कि 3 दिन तक, 3 days तक इतना रोए खबर हुसैन पे जाकर सुलेमान और उनके साथी कि इनके रोने की आवाज कूफे तक जा रही थी रातों में। मजाक नहीं है, 3 दिन पहली मरतबा कोई जायर 3 दिन करबला बैठा उस जमाने, पहला जायर इतना गिरिया किया कि इनके रोने की चीख की आवाज कूफे तक लोग सुन गए रात के। 3 दिन करके अब ये लोग करबला से चले सुलेमान। उधर अब्दुल्ला इब्ने उबैदुल्लाह ज़ियाद, कौन? इब्ने ज़ियाद का बेटा। उसको पता चला कि 10,000 की आर्मी खूने हुसैन का बदला लेने इब्ने ज़ियाद के पास आ रहे। तो उसने क्या किया, 10,000 की आर्मी को लेके चला और ये कहा, अब ये कहा कि रात के हिस्से में ये लोग जब ज्यारत करते रहेंगे हम रात के हिस्से में हमला करेंगे। जैसे गुरीला वार होती है, अभी आपने देखा होगा लेबनान में जो इसराइल के साथ हिजबुल्लाह ने जंग की थी वो डायरेक्ट जंग नहीं थी, वो गोरिल्ला वार करा किया था अपने कि छुप के मारते फिर अपने अपने बेसिस पे चल जाते। तो जो गोरिल्ला वार होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है। तो इसको अरबी में कहते हैं शकून की जंग, इसलिए कि आज जैसा जंग हो रही ना 1400 साल से जंग के कई हिस्से होते थे। शकून वो अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हम शकून करेंगे, ये लोग रात में ज्यादतों में, हम रात में आके इन पे हमला करेंगे, ये लोग गफलत में रहेंगे, हम इनको मार डालेंगे। 10,000 की आर्मी लेके आ, यहां पर सुलेमान को पता चल गया कि अब इब्ने ज़ियाद का बेटा अब्दुल्ला 10,000 की आर्मी लेके आ रहे हैं। सुलेमान ख़ज़ाई कौन थे? सुलेमान ख़ज़ाई को मौला ने शकून का माहिर बनाया था, ये मौला के शागिर्द थे, मौला के स्टूडेंट थे, इन्होंने इनको माहिर बनाया था, इनको सिखाया था कि शकून अगर कोई ऐसा हमला करे गोरिल्ला वार करे तो तुमको उसका जवाब कैसा देना है। तो ये सीनियर आदमी 93 ईयर्स के, इनको पता था, एक्सपीरियंस था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने पास से 2 शख्स को बुलाया, अब्दुल्ला इब्ने वाय और सुलेमान और इब्राहिम इब्ने अब्दुल्ला, दोनों को बुला के कहा तुमको पता है कि इब्ने ज़ियाद का बेटा 10,000 की आर्मी लेके आ रहा है और शकून करने वाला है। तो उन्होंने कहा आप घबराइए मत, वेलकम किए आप मेरे साथ 2,000 सिपाही को दे दे, दूसरे ने कहा मुझे 2,000 दे दे और दोनों को लेके हम 4,000। तो उन्होंने कहा वहां 10,000 है, तो कहा आप फिक्र मत करो, वेलकम किए करबला में ये लोग हैं, ये 2,000 की आर्मी 4,000 दोनों साहबियों के साथ चली। नखीला एक जगह है करबला और कूफे के दरमियान, वो पहाड़ी जगह है। इन लोगों ने प्लान किया, जंग के प्लान कैसा होते थे, इन्होंने प्लान किया कि अगर नखीला से आएंगे तो यहाँ माउंटेन्स है, घोड़े पूरे थक जाएंगे, इतने थकेंगे कि फिर वो जंग बराबर नहीं कर सकेंगे, तो ये लोग इधर से नहीं आएंगे। दूसरी एक जगह बताई कि जो बिल्कुल ऐसा स्लोप था, कहा वहां से आएंगे तो हो सकता नुकसान हो, रात का वक्त है, इसलिए ये लोग ये रास्ते से भी नहीं आएंगे। एक रास्ता निकला था नासरी बोल के, वो रास्ते पे कहा कि ये 10,000 यहां से आएंगे और आके हम पे हमला करेंगे। इन्होंने क्या किया, एक स्पॉट पे जाके दोनों ये साहबी जिनको सुलेमान ने दिया था खड़े हो गए, अपनी आर्मी को फैला दिया और सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जब हम हुक्म दें तो तुम आके रात में हमला करना। पूरी आर्मी इनकी फैली हुई है और ये दोनों रास्ते में खड़े हुए। अच्छा, इधर से 10,000 आ रहे थे, कौन आ रहा था? शिमर लेके आ रहा था। शिमर के हाथ में 5,000 थे और हसीम इब्ने नमी का वाक्य आएगा। हसीम इब्ने नमी वो जालिम है जिसने शहजादे अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी। हसीम इब्ने नमी ये बड़ा जालिम था, इसने ये खातिल है शहजादे अली अकबर का। और शिमर तो जानते हैं कि मालूम कौन था, इमाम हुसैन का खातिल। 5,000 शिमर के साथ थे, 5,000 हसीम इब्ने नमी के साथ, ये 10,000 की आर्मी आ रही। सामने सामने शिमर फ्लैग लेके चल रहा अपना, इधर हसीम इब्ने नमी चल रहे। आधी रात का वक्त है, चांद नहीं है, मतलब इब्तदाई वक्त है या महीने का आखिरी वक्त था जब चांद बिल्कुल डूब जाता और फिर सितारे स्टार्स की रोशनी थी, हल्की हल्की रोशनी। और ये दोनों मौला के चाहने वाले बीच रोड पे आप जैसा कहें खड़े हुए, इनकी पूरी आर्मी फैली हुई है, रात का वक्त है, आधी रात का वक्त है, गोरिल्ला वार के लिए, लेकिन ये आ रहा है कि शकून करने। सामने से शिमर ने हसीम से कहा कि देखो दो आदमी खड़े हुए, कोई 2 शख्स है। उसने भी देखा दूर के डिस्टेंस से, देख के कहा शिमर के पीछे 10,000 आदमी है, बड़ी जोर से जबरदस्ती से कहा कौन हो तुम लोग, ये तो जानते थे। तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करा कि मैं हूं और ये, जैसे सुना शिमर ने हसीम से कहा ये लोग खड़े हुए अब्दुल्ला जो शकून के माहिर है, हमारी मौत आगे है, मौत बन के ठहरे हैं, इन्होंने पलट के कहा सर जिस नियत से तू आ रहा था ना तू हमको गफलत में मारना चाहता था ना आज तुझे हम गफलत में मारेंगे तुझे तुझे सोचा भी नहीं था कि हम आधी रात में आ रहे ये कहकर इन्होंने आवाज बुलंद की पहली आवाज पहली दफा ये तारीख में या तारतल हुसैन ये पहला नारा है या तारतल हुसैन ये कहकर नारा है कि वह हुसैन के चाहने वाले आ जाओ पहली मरतबा जिन्होंने बुलंद किया वो उस वक्त बुलंद वाक करवा कि या तारतल हुसैन अब मुख्तार के वाकत में और नारे देखेंगे कैसे कैसे नारे आए या तारतल हुसैन बल्कि इन्होंने चीखा जैसी चीखा वो जो आर्मी इनकी फैली हुई थी इन्होंने आके इन पे हमला किया रिवायत का जुमला है कि ऐसा हमला किया जैसा कॉटन होती ना रुई रुई जब आग में अगर आप डालें रुई है और आप उसके ऊपर फायर वॉल डाल दें तो जैसा रुई लिपट जाती ना आग को इसी तरह ये पूरे हुसैन के साथी इनके ऊपर ऐसा लिपटे कि जैसे आग में रुई लिपट जाती वो लोग पश्चिम फेंक के भागने लगे एक इतना हलचल मची कि एक दूसरे को मार के चले गए शिमिल ने अपने परचम जोड़ा वो भागा और हसीम ने परचम जोड़ा वो भाग गया अब ये लोगों ने इनके 2000 थे उनके 10000 थे इनके 2000 में से 1000 शहीद हुए उसके 10000 में से 6000 खत्म हुए पूरी खत्म जल खत्म हो गई वो लोग भाग गए अब जब शिमिल और हसीम ने नवीर भागा लीडर ही भागा तो सब भागे यार आपके सामने हिस्ट्री रिपीट ना हमेशा याद रखिए जंग खैबर को याद करिए जब लीडर भागता था तो सभी भागते थे चलो आप पढ़े मोहम्मद वाले एक बार पढ़ने वाले ये सीधा ये लोग खूफे आ गए वापस करवला नहीं गया सुलेमान से सुलेमान अपने लश्कर को लेकर वापस आ रहे थे तो देखा कि शिमिल का परचम भी पड़ा हुआ है हसीम का परचम समझ गए एक सीधा कूफा है कूफा आने के बाद गले मिले मुलाकात हुई मालूम किया क्या हुआ इन्होंने पूरा वाकया बताया वाकया बताने के बाद अब अब्दुल्ला इब्ने जियाद को पता चला कि 6000 मेरे सिपाही मर गए फिर उसने एक आदमी को जमा कर दिया अब सुलेमान अपने लश्कर को लेके 15000 के लश्कर को लेके कूफे से चले उनको पता है कि इब्ने जियाद बसरे में है बसरे में जाकर इब्ने जियाद से हमला करेंगे रास्ते में उमर इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का बेटा वो 10-15 हजार की आर्मी को लेके आगे आ गया उसने कहा कि मैं सुलेमान से उनका बदला ले लूंगा जंग शुरू हुई जंग में यह मुआहिदा हुआ कि एक आदमी इधर से जाएगा एक आदमी उधर से जाएगा एक जाता था मारता था वापस आता था सुलेमान का लश्कर वैसे ही रहा लेकिन उमर इब्ने जियाद के लश्कर में कमी होती थी उसके बाद खालिद इब्ने सुलेमान खजाइन पर बैठे उन्होंने आगे कहा बाबा ये जंग कब तक ऐसी होगी ये तो बहुत लंबी चल रही तो सुलेमान ने पूछा बेटा फिर तुम चाहते क्या तो कहा वो जो आखिर में है ना उमर इब्ने जियाद उबैदुल्लाह इब्ने जियाद इब्ने जियाद का बेटा मैं उसको मानना चाहता हूं तो उन्होंने कहा बेटा तुम पहले जाके अपना तारुफ तो कराओ तो कहा बाबा जब मैं जाके कहता हूं मैं सुलेमान का बेटा खालिद हूं तो मेरे से कोई लड़ने नहीं आता उसके बाद सुलेमान ने कहा ऐसे मत कहो अब जाके कहो कि चेहरे पे नकाब डाल दो कवर करो चेहरे को और जाओ जाके बोलो मैं अली का गुलाम आया ये पहुंचे मैदान में पहुंच के कहा कि आओ मेरे मुकाबले में तो कोई नहीं आया तो कहा कौन हो तुम तो कहा मैं अली का गुलाम हूं तो पीछे से आवाज आई गुलामों से नहीं लड़ते लड़ रहे हम गुलामों से नहीं लड़ते तो हुआ क्या ये वापस आ गए इन्होंने कहा कि अब मुझे आके सुलेमान ने कहने लगे बाबा जगह वैसे नहीं होगी ये कब तक चली प्रॉब्लम हो रही मैं जो आखिर में है ना मैं उससे लड़ूंगा तो सुलेमान ने कहा तुम जानते हो कि बीच में वो लास्ट में वो तो बैठा पाया इब्ने जियाद का बेटा लास्ट में बिल्कुल नाके नाका मतलब ऊंट पे जब ये जो लीडर्स रहते थे ना ये लोग ऊंट पे कैसे बैठते थे कैमल पे तो बाकायदा कैमल पे एक रूम टाइप रहता था उसमें बैठते थे या फिर क्या करते थे पूरी जीरा सोने और लोहे की जीरा सीने पे बांधते थे नीचे तक वो टॉप होते वो पहनते थे और सर पे जैसा आज हेलमेट है ना वैसी पूरी वो आती थी वो यहां तक आती थी सिर्फ आंखें नजर आती थी और नाक कैसा नजर आता था कान कैसा नजर आता था वो भी अंदर से वो भी कवर इस तरह पूरा मेटल का इंसान रहता था जैसा आजकल रोबोट कैसे रहते हैं बिल्कुल उसी टाइप का रहता बन जाता था इससे तलवार से अगर मारे तो जिसम के किसी हिस्से में हाथ नहीं लगा तकलीफ ना हो जख्मी ना वो लास्ट में बैठा हुआ आप गौर से सुने वो लास्ट में बैठा है नाके के ऊपर सुलेमान का बेटा कहता है कि बाबा मैं उसको मारना चाहता हूं जो कमांडर है जो लीडर है जो लेके आया है फौज को इब्ने जियाद का बेटा उसको मारूंगा तो फौज खुदबा खुद भाग जाएगी, वो मरेगा तो सब खत्म हो जाएगी, जैन खुदबा खुद खत्म हो जाएगी। तो सुलेमान ने कहा बेटा तुम देख रहे सामने क्या हाल है, सबसे सामने तीरंदाज खड़े, जो आर्मी जो ठहरा रहे थे जंग में, तीर जो तीर चलाने वाले रहते थे उनको सबसे आगे रखते थे, वो लोग बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहते तीर चलाने, इसलिए कोई एंटर हो तो तीर से दूर से फेंको, खत्म करो, एंटर ही ना हो। तीर चलाने वालों के बाद नैजा फेंकने वाले वो लोग खड़े थे, नैजे भी छह फीट के होते थे, ऐसा नहीं है एक फीट का दो फीट का रहता, वो जो छोटा था वो वर्षी होती थी, छह फीट बाद रिवायतों में है कि इस तरह वो लोग ऐसा फेंकते थे कि 8-8 मीटर के जो नैजे होते थे वो हवा में फेंकते थे, हवा में ऐसा लहराते हुए जाके उसके एंगल पे पड़ते, जैसे आजकल मिजाइल जाती है ना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, तो वो हिसाब होता। अब सद्दाम की मिजाइल अलग थी लेकिन दूसरी मिजाइल तो एक्यूरेसी थी ना, उसमें हुआ क्या, नैजे फेंकने वाले उसके पीछे, तीरंदाज के पीछे, उसके पीछे तलवार चलाने वाले, इस तरह उसने आर्मी को डिवाइड किया। तो सुलेमान ने कहा बेटा वो तो लास्ट में बड़ा हुआ है, तीरंदाज तुम जब तुम एंटर हो गए तो तीरंदाज तुम्हारे सीने को छन्नी कर देंगे, उधर से निकल गए तो तलवार चलाने वाले तुम्हें खत्म करेंगे, फिर नैजा फेंक के तुम्हें मार देंगे, तुम अकेले 15,000 के आदमी से तुम अकेले लड़के उसको मारना चाहते। तो पलट के कहा बाबा मैं आप ही का बेटा हूं ना, और आपने अभी कहा कि आप मैं अभी का गुलाम हूं, गिव मी चांस, बस आप मुझे चांस दीजिए, मैं जाके उसको मार के खत्म ही करता हूं जाकर। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी तरफ से इजाजत है। अच्छा उस जमाने में भी आप एक चीज और करते सुने कि बगैर अपने बुजुर्ग के या जो भी लीडर जो जो जिसके साथ जंग लड़ने आते थे उसके परमिशन के बगैर कोई काम नहीं करता था, इजाजत देते थे फिर जाते थे। यही तो मौलाली ने जगह सिफिन में कहा कि मौलाली कहते थे कुछ मुसलमान कुछ करते थे, मौलाली कह रहे हैं ये करो वो कहते थे ये, इसीलिए अली ने कहा था कि अगर पहले दिन मौलाना एक अजीब जुमला कहा था जगह सिफिन में, जब पूरी दोनों आर्मी तैयार हो गए थे तो सुबह में आके मौलाना खुतबा इशारा फरमाया, आप देखेंगे मौलाना कैसा जुमला है, मौला कहते हैं कि अपने लश्कर को अपनी आर्मी को कहते हैं कि हम हक पे हैं लेकिन हम हार जाएंगे, हम हक पे हैं लेकिन हम हार जाएंगे, और ये लोग बातिल पर है लेकिन ये जीत जाएंगे, ये गलती पर जीत जाएंगे। तो रावी ने पूछा मौला क्यों, तो आपने इशारा फरमाया कि हम हक पे इसलिए हारेंगे और ये बातिल पे इसलिए जीतेंगे कि तुम जो है अपने रहबर की अपने लीडर की बात नहीं सुनते इसलिए हारोगे, वो लोग बातिल पे हैं लेकिन अपने रहबर की बात सुनते हैं इसी माविया की बात सुनते हैं इसलिए वो जीत जाएंगे, बातिल पे होने के बाद भी अगर अपने लीडर का अपने रहबर की बात सुने ना इंसान कामयाबी मिलती है। तो बार ये बात तो बीच में आ गई, उसके बाद क्या हुआ, जब सुलेमान ने अपने बेटे को इजाजत दी, सुलेमान का बेटा चला जिरा पहनता है, जिरा पहनकर रिवायत का जुमला है, आप सैयद नूरुल्लाह शूसरी लिखते हैं कि जब वो चला दूर से जाते थे घोड़े को तेज से चला के दूर से प्रेशर में आते थे, आप यकीन करें तीरंदाज सामने उसके पीछे नजा फेंकने वाले उसके पीछे तलवार चलाने वाले 15,000 आदमी सामने उसके पीछे वो नाके में बैठा हुआ है, रिवायत का जुमला है कि जैसा बिजली जाती है ना बिजली जैसा चमकती है, वो चमकते हुए जो आर्मी थी उनके जहन में तस्वुर में भी ये बात नहीं आई कि इतनी तेज अपने घोड़े को दौड़ाते हुए इनसे बचते हुए सीधा वहां तक पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो ये तो घोड़े पे थे, वो ऊंट के ऊपर, ऊंट तो ऊंचा होता है नाखा, वो ऊंट पर बैठा हुआ था, ये घोड़े पे, रिवायत में है कि अपने जो घोड़े के ऊपर जो रिकाब होती जिसमें पैर रखता उस पर जंप किया, जंप करके नैजे को निकाल के जब उसका परछम कह के उसके नैजे को मारा तो रिवायत में है कि इनका नैजा उसके सीने को चीरता हुआ बाहर निकल गया, जब वो नीचे गिरा तो पूरी आर्मी में हंगामा मच गया कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का बेटा मर गया। अब उसके बाद ये पलटे, अब ऐसा मानने वाले का मुखाजा कौन करेगा, ये फौज भागने लगी, इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मेरे बेटे को सुलेमान के बेटे ने मार दिया, जंग ये जंग इन्होंने की सुलेमान ने, अब तो इनकी हिम्मतें बहुत बढ़ गई थी, बहुत बढ़ गई थी, अब ये लश्कर को लेके चले, कहां चले, बसरे की तरफ, कूफा से साउथ की तरफ कोई आएगा तो वो बसरा है, बसरा जैसा कल मैंने कहा था कि कोयत से बहुत सबसे करीबी जो सिटी पड़ती है रांची वो बसरा है, हार्डली 200 किलोमीटर से बसरा, बसरा बहुत बड़ा, बसरे में पोर्ट है और बहुत बड़ा एरिया है हमारे शिया बहुत के, तो उस वक्त बसरे में इतने ज्यादा गवर्नर था, इतने ज्यादा को पता चला कि ये तो खत्म हो गया, बेटा तो मेरा मर गया, अब ये तैयारी करने लगा सुलेमान इब्ने ज़ियाद के तलाश के चक्कर में बसरे की तरफ आ गए, बसरा पहुंचे बाहर शहर के, इब्ने ज़ियाद को पता चला कि उसकी मौत सुलेमान की शक्ल में आ गई। अब इब्ने ज़ियाद घबराता, उसका जुमला है इब्ने ज़ियाद का कि मैं दो वक्त अपनी जिंदगी से डर गया। दो वक्त, एक वो वक्त था कि जब जनाब मुस्लिम ने दारुल अमार पर हमला किया, वो मैंने पढ़ा था पहली मंजिल। दूसरा ये वक्त कि जब सुलेमान मेरी तलाश में आया, इब्ने ज़ियाद दरबार में आया। अच्छा, इब्ने ज़ियाद को यहां पता चल गया कि यज़ीद वासिला जहन्नम, यज़ीद मर गया, लेकिन उसने बसरे में ऐलान नहीं किया कि यज़ीद मर गया। उस वक्त कोई टेलीफोन या इंटरनेट तो नहीं था कि लोगों को इमीडिएटली पता, दो दो महीने तक पता नहीं चलता। इब्ने ज़ियाद ने जितना माल जितना पैसा था ना सब जमा किया, मुसलमानों का बैतुल माल का पूरा पैसा जमा कर, गवर्नर है उसने एक मस्जिद में आके एक खुतबा दिया, खुतबा दिया एक तकरीर करके कहा कि मैं यज़ीद ने मुझे बुलाया है शाम, मैं शाम को जरूरी काम से जा रहा हूँ और मैं अपने भाई को यहाँ का गवर्नर बना रहा हूँ, यहाँ का इंचार्ज बना रहा हूँ मेरी जगह पे। अगर किसी ने बसरे के मुसलमानों से कहा अगर तुमने रिवोल्ट करने की कोशिश की मैं आके सबसे बदला ले लूंगा, तुम जानते कि मैं कितना जालिम हूँ, खुद कहता है। उसके बाद उस जमाने में जब ये काफिले जाते थे ना तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई दूसरा काफिला उसको प्रोटेक्ट करता था। तो एक शख्स था अब्दुल्ला इब्ने जारूज, ये शख्स वो था कि जिसके 21 बेटे थे, 21, और हर बेटे के साथ एक एक हजार का लश्कर था, यानी 21,000 का लश्कर इसके पास था, अब्दुल्ला इब्ने जारूज। ये जो है काफिलों को प्रोटेक्शन देता था, एक सब एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए ये प्रोटेक्शन देता था। तो इसने इब्ने ज़ियाद ने अब्दुल्ला इब्ने जारूज को बुलवाया, बुलवा के कहा कि मुझे शाम जाना है, यज़ीद ने मुझे बुलाया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब जाऊं शाम तो मेरे लश्कर को, मेरे काफिले को, मेरे कारवान को तू प्रोटेक्शन देना। इसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, जब काफिला कोई शाम को जाएगा तो मैं तुझे लेके चले जाऊँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा नहीं, मुझे आज जाना है, इसी वक्त जाना है। तो उसने कहा कि आज जाओगे, सलाम पड़े मोहम्मद वाले बाबा जब सलाम पड़े इब्ने ज़ियाद ने अब्दुल्ला जारूज से कहा नहीं मुझे आज ही जाना है। उसने कहा ऐसा क्या काम पड़ गया? उसने कहा नहीं मुझे आज ही जाना है, इसी वक्त जाना है। उसने कहा अगर आज जाना है तो मुझे क्या देगा? तो कहा मेरा जितना वेट है ना, जितना मेरा वजन है उतना सोना भी देगा। और इब्ने ज़ियाद का वजन कितना था? 100+ था, 100। आप इमेजिन करें 100 kg गोल्ड, ये इब्ने ज़ियाद के का पैसा नहीं, ये मुसलमानों का बैतुल माल का पैसा है, ये ज़कात और खुम्स का पैसा, खुम्स और ये ज़कात का पैसा जो टैक्स उसने लगाया था। कहा कि मैं अपने वजन के बराबर सोना दूंगा। तो ये जारूज पलटा अपने बेटों की, तो बेटों ने कहा डील तो बहुत अच्छी है, इसको लेट्स टेक हिम। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, काफिला इन्होंने तैयार किया जारूज ने। और इब्ने ज़ियाद ने कहा सुनो, मुझे जो नॉर्मल नेशनल हाईवे है ना, जैसे नेशनल हाईवे आप जिसे कहेंगे, आप बॉम्बे से नागपुर जा रहे, बॉम्बे से गुजरात जा रहे, तो एक हाईवे है जो नॉर्मल हाईवे होती है जिसमें सब ट्रैवल करते हैं। इसने कहा कि नहीं मुझे वो हाईवे से जाना नहीं है, मुझे दूसरे रास्ते से जाना है, नेशनल हाईवे से जाना नहीं, मुझे कोई दूसरा रास्ते से, खुफिया रास्ता जो उसका दूसरा रास्ता है उधर से लेके चल। तो इसने कहा कि क्यों लेके चलो उधर से, जो सीधा रास्ता उधर से जाएंगे। तो कहा नहीं उधर से मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा कि उधर से जाने में पैसे जाए, ये बड़ा लालची था ये जारूज, उसने कहा पैसा ज्यादा। इब्ने ज़ियाद कहता है कि मेरा जो वजन है ना उसका दुगना दूंगा, डबल दूंगा सोना, मुझे शाम पहुंचा दे। इससे कहा अगर बात क्या, रीजन क्या, तू इतना घबराया हुआ क्यों? गवर्नर आप देखे कैसा जालिम था, अब क्या हालत है? आहिस्ता आहिस्ता जब मौत सर पे आ रही थी तो कैसे डर रहा था। कहा कि नहीं मैं डबल सोना दूंगा तुझे, तू मुझे दूसरे रास्ते से लेकेगा। इब्ने ज़ियाद से पूछा कि अगर वजह क्या, रीजन क्या? उसने कहा मैं रीजन नहीं बता सकता तुझे। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तुझे रीजन नहीं बताऊंगा क्या, बारह एक रीजन है जिसकी वजह से आई जस्ट वॉन्ट टू लीव बसरा। तो उसने कहा ठीक है हम दूसरे रास्ते से लेके जाएंगे उसको। इब्ने ज़ियाद को बीच जो काफिला था 21,000 का काफिला था, 21,000+ का काफिला था, तो ये पूरे ऊंटों के बीच में इब्ने ज़ियाद के ऊंट को रखा, इसको बाकायदा नाके को ऊपर से कवर किया, कवर करके उसको इस जालिम को उसमें बिठाया और ये जारूज जो है इस काफिले को लेकर चला। जारूज का काफिला ये था कि अरब के बड़े बड़े जो डाकू भी होते थे, अगर उनको पता चलता था कि जारूज इसको प्रोटेक्शन दे रहा है इस काफिले को, तो उस पर हमला नहीं करते थे। इसलिए कि इसके 21 बेटे और हर बेटे के पीछे 1,000 का लश्कर और बड़े बहादुर लोग थे। इनके बेटों की मैं आगे बताऊंगा कि क्या इनके पास टेक्निक थी। तो ये लोग बड़े बड़े जो कारवां जाते थे उसको प्रोटेक्शन देते थे और इनका प्रोविजन ये था। ये काफिला जब चल रहा था, अच्छा इनके बेटों में तीन चार खसूसियत थी अजीब, आप देखें इनके एक बेटा अपने कान को जमीन पे रखता था, कान को जमीन पे रख के मालूम करता था कि आगे कितना लश्कर है, कितने हजार का लश्कर है। इसलिए कि उस जमाने में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी ना, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि रडार के जरिए आपको मालूम हो जाए कि 200 किलोमीटर पे ये कार शिप खड़ी की है, 200 किलोमीटर पे इतने आदमी है। उस जमाने में रडार नहीं थे, लोग हवा को सूंघ के, अजीब लग रहा होगा आपको, स्मेल को सूंघ के बोलते थे कि इतने ऊंट है, इतने घोड़े है और इतने दूसरे जानवर, सिर्फ हवा को सूंघ के। बाद लोग इसके बाद बेटों में यह खसूसियत थी कि 50 किलोमीटर दूर भी अगर कोई खड़ा हुआ है, काफिला मतलब कोई आर्मी खड़ी है, तो जो गर्द उठती थी, गर्द को हवा में देख के समझ जाते थे कि वहां पे कितने आदमी। एक बेटा कान को अपने जमीन पे रखता था, रख के बताता था कि सामने कितनी आर्मी है, कितने लोग है। तो इनका एक बेटा, उसने ये देखा कि हवा में गर्द उठ रही, डर से उसने अपने दूसरे भाई को बुलाया, बुला के कहा कि पूरा ये मतलब जो है, पूरा वेदर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये डर क्यों उठ रही, इसका मतलब सामने कोई लश्कर है, उन कोई जानवर है जिससे गर्द उठ रही और सामने बहुत बड़ा कोई लश्कर नजर आ रहा, 50 किलोमीटर। इसने क्या किया, अपने दूसरे भाई को बुलवाया, उसने अपने कान को जमीन पे रखा, जमीन पे रखकर आवाज को सुना। आप देखिए क्या टेक्नोलॉजी थी उस जमाने में, अजीब लग रहा होगा ना कि कान को सुन के कैसा मालूम कर रहे, कान को सुन के ये आपको अजीब लग रहा। अब मैं आपको इसके रेफरेंस में हिजरत के वाक्य में, जब रसूलुल्लाह चले हिजरत में, अब मक्के से अपने घर की तरफ उहार में जब गए, तो ये लोग जमाने में लोग कैसा पहचानते थे, जब जमीन पे पैर कोई रखता था गर्द रेत के ऊपर, तो पंजे का इंप्रेशन पड़ता ना, तो इंप्रेशन देख के पहचानते थे कि किसका इंप्रेशन है। रसूल को जो घाट तक पकड़ने आए थे वो ऐसे तो आए थे, वो जो माहिर थे, जो माहरीन थे, जो इसके एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों ने क्या किया था, ये अबू जहल अबू लहब इन लोगों ने क्या किया था, वो एक्सपर्ट्स को लेके आए थे। रसूलुल्लाह तो घर पे नहीं है, मौला अली बिस्तर पे सो रहे थे, बाहर निकल के आए कि रसूल के पैर के निशान है, पैर के निशान जान जान चलते रहे, खुराक में बुरा वाकया है ना, चलते रहे वो केव तक पहुंच गए, गारे हिरा तक केव तक पहुंचे, केव के पास पहुंच के उस एक्सपर्ट ने कहा यहां तक रसूल के पैरों के इंप्रेशन हम पहचान सकते, इन्हें पैर के इंप्रेशन, हजारों लोगों के पैर के इंप्रेशन होते, चलते हैं आप भी चल रहे, मैं भी चल रहा हूं, ये भी चल रहा, लेकिन हर आदमी पहचानता था कि ये किसका इंप्रेशन है, इतने उस जमाने में एक्सपर्ट्स होते थे। तो उन लोगों ने यही कहा कि केव तक तो हम बता दिया कि रसूल इस केव के अंदर है या आसमान पे उठ गए, तो अल्लाह ने उस केव पे क्या किया था, मकड़ी ने जाला बुन दिया था, कबूतर जो है उसने अंडे दे दी थी, तो उससे ये महसूस हो रहा था कि कबूतर अगर अंडे दे तो अभी तो नहीं दे, अगर दे के वो तीन दिन तक बैठती है अंडों के ऊपर, तो कहा इसका मतलब है कि रसूल केव के अंदर नहीं है, इसलिए केव के अंदर होते तो कबूतर उड़ जाती है, अंडे खराब हो जाते। उस पर मकड़ी ने जाला पूरी जाल बना दी थी, तो अगर कहा कि कोई इंसान अंदर जाए तो जाल तो खुद टूट जाएगी, इसका मतलब रसूल कहते हैं अल्लाह की शान थी। तो उसी तरह जैसा पैरों के एक्सपर्ट्स होते थे, उसी तरह इस तरह के एक्सपर्ट थे। इसका बेटा खाली उसने कान को जमीन पर रखा, रख के अपने भाई से कहा कि सामने कुछ 10-15 हजार का लश्कर है और उसमें नैजे वाले भी है, तलवार वाले भी है। अब ये घबराया जानू जो इनका बाप था, ये सीधा इंग्लैंड जब के पास आया, आगे वाला बता सही मामला क्या है तेरा, आगे एक बहुत बड़ा लश्कर खड़ा हुआ है, हमारी मौत बन के ठहरा हुआ, मसला है क्या हमको तो बता दे क्या रहा। तो उस वक्त कितने जाते कि यजीद मर गया है और कूफे में रिवोल्ट हुआ, पूरे खैदी बाहर आ गए और मेरा खून हसन का बदला लेना चाहते, इसलिए मैं बसने से जा रहा हूं। जारू ने कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया, तो कहा कौन आया तेरा, तुझसे लेने कौन आ रहा है, तो कहा सुलेमान खजाई आ रहा है। सुलेमान खजाई का नाम सुना, जारू ने कहा वो तो हमारी मौत है और तेरी वजह से हम मौत में चले जाए, मेरे बेटे खतर हो जाए, तूने पहले क्यों नहीं बताया, अब मैं तुझे लेके नहीं जाता, बीच रास्ते पे उसने कह दिया मैं तुझे बीच में लेके नहीं जाता। जैसे दोस्तों जैसे ही कान रिवाइज का जुमला ये इब्ने ज़ियाद नाखे से उतरा, ये जालिम गवर्नर जारूज के पैर पकड़ लिए। कितनी आपने आसानी से सुना, कैसा जालिम था, कैसा हुकूमत कर रहा था जालिम, आज जब मौत आई अल्लाह कैसा जलील करता है, मौत जब आई तो जारूज के पैर पकड़ के कहने लगा, तू मुझे बचा ले इस वक्त, मैं चार गुना सोना तुझे दूंगा, और अगर हमारी हुकूमत सीरिया पे आ गई, यदि तो मर गया अगर मेरी हुकूमत आ गई वहां पे, तो मैं तुझे गवर्नरशिप भी दूंगा, तू मुझे बचा ले इस वक्त, सुलेमान के हाथ से बचा ले। सुलेमान जब मैं बच नहीं सकता, पैर पकड़ लेता, अल्लाह ऐसा दलील करता, इन लोगों को ऐसा दलील किया कि मुझे इस वक्त बचा ले। जब अब ये लालची बहुत था, ग्रीडी आदमी था बस जारूद, इसने कहा इतना बड़ा डील हो रही है, इसने कहा लेकिन मैं जैसे कहूंगा वैसा तुझे चलना होगा। अब आप देखें कि इंसान अल्लाह दलील कैसे करता जा रहा है। इब्ने ज़र उसने कहा कि इब्ने ज़र के पूरे कपड़े उतार दे, बरहना कर, नेकेट कर दिया, करके गंदगी इसके पैर, इसके जिस्म पे, सर से लेकर पैर तक लगा दी। क्यों लगा दी? इब्ने ज़र जब इमाम हुसैन दरअसल कूफे में आया था इब्ने ज़र के दरबार में, तो इसने मजलूम करबला के सर को उठाया था, उठा के गुस्ताखी की थी, कुछ गुस्ताखी की थी, मैं बोल नहीं सकता। तो इमाम हुसैन के सर में से खून का कतरा, ब्लड, मतलब ड्रॉप ऑफ ब्लड इसके रान पे गिरा, वो खून का कतरा रान पे गिर कर पूरा सुराख करके बाहर निकल गया। तो अब वहां पे इसको एक जख्म हो गया था, और जख्म में से इतनी बदबू आती थी, तो ये हमेशा अपने साथ अंबर, उस जमाने में परफ्यूम्स तो नहीं थे ना, ऊद और अंबर हमेशा अपने जिस्म पे लगा के रखता था, अपने कपड़ों पे, उस बदबू से बचने के लिए। ये अजीब अजाब इस पर नाजिल हुआ था कि इसके जिस्म से एक स्मेल, डर्टी स्मेल आती थी, तो ये पूरा ऊद और अंबर अपने जिस्म पे लगाता था। तो लोग जो इसे पहचानते थे, दूर से आ रहा था, वो खुशबू से पहचानते थे। इवन जब इन्हें जहन्नम में जला, जब इसका कत्ल हुआ, तो इसकी लाश जो पहचानी गई, इसके कपड़ों से पहचानी गई, एक कपड़ों से स्मेल आ रही थी, जिससे ऊद और अंबर लगा रखता। तो इसने कहा, जारूद ने कहा, ऊद और अंबर से तू पहचाना जाएगा, तू हमारे साथ है अगर तेरी खुशबू रही। इस वो बदबू के लिए और गंदगी पूरी नेगेट करके पूरे जिस्म पे लगा दी। अब क्या किया, अब लेके कैसे जाएंगे? इससे क्या होगा, चेकिंग होगी, पोस्ट, बिल्कुल चेक पोस्ट की तरह बैठे हुए वहां पे, चेकिंग होगी, तो इब्ने ज़र पकड़ा जाएगा तो हम भी मारे जाएंगे। इसने कहा कि एक नाखे को, एक ऊंट को लिया, ऊंट को लेके इसको बिल्कुल बरहना नेकट करके ऊंट के पेट पे मारना, पेट पे नीचे से, जैसा एक लिजर्ड के तरह की चिपलक लिजर्ड, उस तरह की जिंदगी में सारा लिजर्ड हुआ। तो इसको जो है ऊंट के छिपलक की तरह इसको नीचे से बांध दिया, पेट पे, ऊंट के स्टमक पे बांध के, रस्सियों से बांध के, अतराफ में पूरे मश्क, उस पानी की जो मश्क होती थी ना, जो पानी जो कैरी करते, वाटर जो कैरी करते थे वो लोग, तो ऊन पे पानी रहता था, तो उस ऊन पे क्या किया, पूरे मश्क को लगा दिया, हर तरफ से, चारों तरफ से कवर कर दिया, इसको अंदर लिटा के ऊपर से मश्क डाल के कवर कर दिया, वाटर की ये ऊन है, ये वाटर कैरी कर रहा। अब ये चले, जब चलते चलते एक दिन के बाद या 10 घंटे के बाद सामने पहुंचे, तो सामने सुलेमान का लश्कर पहले से तैयार। जारूद उतरा, जो इसका बाप था बच्चों का, सुलेमान के पास गया, जाके कहा सुलेमान क्या चाहते? तो सुलेमान बड़ा का चाहने वाला है, उसे कहा तेरा हमारा कोई झगड़ा नहीं, लेकिन मेरे एक स्पाई ने, एक जासूस ने मुझे रिपोर्ट दी है कि इब्ने ज़र तेरे साथ है, तू हमारे हवाले कर दे इब्ने ज़र को, तू चला जाए, हमसे तेरा कोई झगड़ा नहीं। उसने कहा, जारूद ने कहा पैसे का लालची, कहता है कि इब्ने ज़र, सुलेमान इब्ने ज़र में हमारे साथ नहीं है, इसलिए कि इसको चार गुना सोना मिलने वाला है, गवर्नरशिप मिलने वाली है। कहता है कि इब्ने ज़र मेरे साथ नहीं है, कोई खरीब में पहाड़ नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, कोई जंगल नहीं है, लश्कर सामने है, तुम जाके चेक कर लो। तो सुलेमान के सिपाही पहुंच के पूरे इसकी आर्म जो साथ था, 21,000-20,000 का जो पूरा कारवां जा रहा था, एक एक जगह चेक किया, नहीं मिला इब्ने ज़र। 3 दिन तक चेक करते रहे, उसके बाद उनके साथियों ने आके सुलेमान से कहा कि हमको हमने तलाश किया, नहीं मिला इसको, तो अच्छा पानी के मश में लेके जा रहे थे। सुलेमान ने उस वक्त एक जुमला कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सुलेमान ने कहा जारूज मुझे मालूम है कि मेरे स्पाई ने जो न्यूज दी है ना वो बिल्कुल 100% है, इब्ने ज़र तेरे साथ, लेकिन हमने पूरी कोशिश की, हमको नहीं मिला, तेरी मेरी डील ये हुई थी कि इब्ने ज़र मिलेगा, हम तलाश करेंगे, नहीं मिलेगा फाइन, लेकिन तू चला जा, आज इब्ने ज़र है, मुझे यकीन है 100%, मुझे इसलिए नहीं मिला कि अब मुझे मेरे मौला का ख्वाल याद आया, मौला अली ने कहा था कि सुलेमान तू नहीं, मुख्तार इब्ने ज़र का खातिल है, कहा मेरे मौला ने कहा था कि मुख्तार तुम खातिल है, अब ये मुख्तार का जो है ना, मुख्तार इसे खतल करेंगे, मैं नहीं। इधर काफिला निकल के सीरिया पहुंच गया, जब सीरिया पहुंचा वहां एक हलचल मची हुई सीरिया में, कि कौन हाकिम बने, किसका हुकूमत हो, क्या यजीद मर गया। यजीद के दो बेटे थे, एक खालिद इब्ने यजीद, एक माविया इब्ने यजीद, अपने बाप के नाम पर रखा था। खालिद इब्ने यजीद एक बेटा था, माविया इब्ने यजीद एक बेटा। सबसे पहले माविया इब्ने यजीद को ऑफर किया गया, बड़ा बेटा था माविया ने, जो ये किंगडम जो इसको ऑफर किया। आप देखिए हक कैसा होता है। माविया इब्ने यजीद ने जब उसको कहा कि तुम खलीफा बन जा, उसने दरबार में आके खुतबा पढ़ा, एक स्पीच दी, देखे बोला कि ये जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी से खून अहले बैत, खून हुसैन की स्मेल आ रही है। मैं इस कुर्सी पे कभी नहीं बैठूंगा, इसलिए नहीं बैठूंगा कि मेरे बाप भी खासिब था, मेरा दादा भी खासिब था। मैं इस हुकूमत को अपने पैरों से ठुकराता हूं, मुझे चाहिए नहीं हुकूमत। 40 दिन में इसको शहीद कर दिए। देखिए हम यजीद या कोई कोई भी हो, हम इंसान से दुश्मनी से नफरत नहीं करते, उसकी उसके फितरत से नजर हम उनको नफरत है, उसके एक्शन से हम लालच करते हैं। जो यजीद ने कहा, आज यजीद का नाम नहीं है सीरिया में, माविया का नाम नहीं है, अबू सुफियान का नहीं है, उनकी नस्ल में किसी का नहीं है, पूरी बनी उमैया के बड़े बड़े जितने किंग्स रूल है, किसी का नाम नहीं है, किसी की खबर नहीं है। आज सीरिया में माविया इब्ने यजीद की खबर है, लिखा हुआ क्या है पता है आपको, माविया इब्ने यजीद मुहिब्बे आले मोहम्मद, ये मौला रखते हैं नाम। ऐसा व्हेन यू डू समथिंग ना, मौला अपने नाम को बाखिर। खानदान बनी उमैया में किसी की खबर नहीं है। सीरिया में आप जब सीरिया जाएंगे तो ज्यारत करेंगे, आप देखें लिखा हुआ है उसकी दरवाजे में लिखा हुआ है कि माविया इब्ने यजीद मुहिब्बे आले मोहम्मद, उसका खबर का निशान भी है। जायरीन जाते हैं सलाम करते हैं, इसलिए कि ये मुहिब्बे आले मोहम्मद था। इसको 40 दिन में यजीद के खानदान वालों ने इसको कत्ल करवा दिया था। इसका छोटा भाई था खालिद, वो जो है हाकिम बना यजीद के बाद, यजीद के बाद यजीद का सक्सेसर उसका बेटा बना खालिद। और इसकी हुकूमत भी नहीं चली। हुआ क्या, जब इब्ने ज़ियाद सीरिया पहुंचा, अब वहां हलचल देखी, वो हालात देखे, ये मरवान के पास पहुंचा, मरवान इब्ने हकम, ये वो जालिम है बनी उमैया का, कि रसूलुल्लाह के जमाने में जब मदीने में ये था, जब रसूल आगे चलते थे पीछे उनको उनकी नखल उतारता था, सूटे मारता था, नखल उतारता था, तो रसूलुल्लाह ने इसको अपनी जिंदगी में शहर बदर कर दिया था। इसको गिरगुट का लखब दिया, गिरगुट समझते ना, गिरगुट कहा था इसको। ये वो जालिम है, वो मनू है। अच्छा ये रिवायत भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से कि मरवान को निकाला गया था, वो जालिम तरीन इंसान था मरवान। यही वो मरवान है जो ज्यारत आशूरा में, आले अबू सुफियान, आले ज़ियादन, आले मरवान जो ज्यारत आशूरा में पढ़ते हैं, यही वही मरवान है, ये वही मरवान है कि खयामत तक अल्लाह ने लानत, मजलूम इमाम ने लानत भेज दी इसके बल, इसकी नस्ल पे लानत है, नस्ल पे लानत, जनरेशन पे लानत है, ये वही मरवान है। तो मरवान जो है वहां पर मरवान मौजूद था, मरवान भी बनी उमैया के खानदान का, मरवान मौजूद था। तो उस वक्त इब्ने ज़ियाद मरवान के पास गया और जाके कहने लगा कि तू हाकिम क्यों नहीं बन जाता, यजीद का सक्सेसर तो क्यों नहीं बन जाता। उसने कहा मेरे पास पैसा कहां है और मैं कैसे बन सकता हूं। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये जो नाखे के ऊपर, ये ऊंट के ऊपर मैंने जो लाखों, मैं अपनी जबान में कहूं कि लाखों डॉलर जो लाया हूं ना, ये किसका क्या है ना, मैं पूरा पैसा तुझे देता हूं, तू गवर्नर से तू हाकिम बन जा, खलीफा बन जा। और ये पैसा लेके जिसको यजीद, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, बड़े बड़े जो ट्राइब्स के लीडर्स थे, उनको यजीद एवरी मंथ पेंशन देता था, पैसे देता था, तो वो तू भी उसी अंदाज से सबको पैसा बांट दे। जब बड़ों को बांट देंगे तो छोटे खुद का भूखा मिल बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज ये कर, जो यजीद की विडो है, यजीद की जो बीवी है, जो बेवा है यजीद की विडो है, तू उसे निकाह कर ले, जब तू निकाह कर लेगा तो तेरी हुकूमत भी सही हो जाएगी। तो इसने कहा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पैसा भी मिल रहा, यजीद की बीवी से शादी भी होगी मेरी, वेरी गुड। उसने कहा अब लेकिन यजीद की बीवी राजी होगी मुझसे शादी करने के लिए, खालिद की माँ। उसने कहा ये मरवा इब्ने ज़ियाद ने कहा मैंने सब हालात को और सही कर दिए मैडम ने, तो निकाह कर ले यजीद की बीवी से। आप देखिए कि मोहब्बत प्यार कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ दुनिया है, दुनिया दुनिया के लिए। मरवा ने कहा ये मरवान बूढ़ा था, रसूल के जमाने का था, यजीद तो यंग था, ये यजीद रसूल के जमाने में था मरवान, खुदा लानत करे इसमें। ये जो है इसने कहा ठीक है मैं निकाह कर लेता हूं। खालिद की मां से उसने निकाह किया, यजीद की बेवा, यजीद की विडो से। कितने दिन में, दो तीन महीने में निकाह गया। वो जो इज्जत का पीरियड है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, विदाउट एक बियर्ड इसने निकाल लिया, ये तो इस्लाम था। उसके बाद अब हाकिम कैसे बनेगा? अब आप देखें प्लीज गौर से सुने, हाकिम कैसे बनेगा? कौन है मरवाने इधर इतने ज्यादा, ये दोनों जालिम बढ़े हुए, इतने ज्यादा आइडिया दे रहा है कि मैं पैसा दूंगा तो पैसा बांट दे पूरी मार्केट में कि लोग खामोश बैठ जाए। दूसरी चीज तो यजीद की बीवी से निकाह कर ले, तेरी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। लेकिन मुझे एक्सेप्ट कौन करेगा, मेरी बैक कौन करेगा? तो इब्ने रिवायत में इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हाथ तो अपना हाथ तो बढ़ा, हाथ बढ़ा के अपने हाथ पे इब्ने ज़ियाद मरवान के हाथ पे हाथ रखे कहता है कि आज से मैं तुझे खलीफा मान लो, मैंने बैक कर ली। तो इसीलिए अल्लामा मौदूदी मशहूर अहले सुन्नत के आलिम ने एक किताब लिखी खिलाफत और मुल्कियत। खिलाफत मुल्कियत में पहुंच गई, मुल्कियत समझ गया, दुनिया वालों में पहुंच गए थे, मुल्क में पहुंच गए थे, इतनी आसान रसूल का फैसला बन गया, इतनी आसान तरीके से। इब्ने ज़ियाद मरवान के हाथ पे बैठ करता यजीद के बाद इस्लाम की हालत देखें क्या हुई थी, इस्लाम की क्या हालत थी कि इतनी आसानी के साथ इन्हें वाकई गदीर का अंदाजा लगा कि हमारा मिली यह है कि जो भी रसूल का सक्सेसर है अपॉइंटेड बाय अल्लाह है वो बनाता है, और उसके लिए सूरह बकरा में अल्लाह ने साफ कह दिया कि ला यनालो अहद ज़ालिमीन, मशहूर आयत है कुरान की कि जब इब्राहिम ने पूछा कि परवरदिगार क्या ये इमामत मेरी नस्ल में होंगी, मेरे जनरेशन में होंगी, तो अल्लाह ने कहा ला यनालो अहद ज़ालिमीन, कि तेरी इमामत तेरी नस्ल में आएंगी लेकिन ज़ालिमीन तक नहीं पहुंचेगी। क्लियर कुरान बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है कि ज़ालिमीन तक नहीं पहुंचेगी। और आप देखेंगे आज मरवान के हाथ पे यजीद का जो दूसरा सक्सेसर बनी उमय, आज मरवान को भी लोग मानते हैं, मरवान की भी इबादत करते हैं, मरवान को भी इसकी तकलीफ में करते हैं, इसलिए मरवान को खलीफा रसूल मानते हैं। वो खलीफा रसूल था, बनी उमय का सेकेंड लास्ट जो है खलीफा था, बनी उमय का पूरा किंगडम को तो मुसलमान तो कंडम नहीं करते, भाई यजीद को कंडम करते होंगे लेकिन पूरा जो है पूरे सिलसिले को मानते। तो मरवान सक्सेसर बना, प्रॉफिट का सक्सेसर बना, वारिस रसूल बना, कैसा? इब्ने ज़ियाद ने सिर्फ हाथ पे बैठ की, बैठ करके आज से तू खलीफा, अब बाहर जाकर पैसे के जोर पे खरीदा गया, वोटर्स को जैसा आज हम खरीदते ना पैसे देके, एग्जैक्टली वही हुआ था, वोटर्स को खरीदा गया, डेमोक्रेसी नहीं थी लेकिन लोगों के मुंह को बंद करने के लिए किसी को 1,00,000 दिनार, किसी को 50,000 दिनार, किसी को 10,000 दिनार, सबके मुंह बंद हो गए। उसके बाद इसने क्या किया, यजीद की विडो से यजीद की बेवा से निकाह कर दिया, निकाह करके मरवान खाफी बन गया, मरवान रसूल का सक्सेसर बन गया। अब क्या था, पूरे अरब में जहां जहां इस्लाम था, अच्छा उस वक्त इस्लाम जो है ईरान तक इस्लाम था, ऊपर नीचे इंडिया तक आ गया था, कराची तक उधर मुल्तान वो हिस्से में पहुंचा था, ऊपर यमन तक चला गया था, इस्लाम को छोटा मुल्क छोटा नहीं था। इस वक्त इतने मुसलमान थे, सबसे बड़ी उस वक्त हुकूमत मुसलमानों की, सबसे बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी हुकूमत का मरवान खाके बन गया, वो मरवान जिसको रसूल अल्लाह ने मदीने से जिला वतन कर दिया था, बाहर कर दिया था कि अपनी तुम मेरी जिंदगी में मेरे शहर में नहीं आना। तो उसके बाद खलीफा अव्वल जब वो खलीफा बने उन्होंने भी मरवान को अंदर नहीं बुलाया, जब दूसरा खलीफा आया उसने भी नहीं बुलाया, तीसरा खलीफा जब बने, नाम आप सबको मालूम है, नाम नहीं ले रहा, तीसरे खलीफा जो है वो बनी उमैया के खानदान में से, अबू सुफियान की नस्ल का तीसरा, वो फैमिली थी, नस्ल की फैमिली थी, तो बनी उमैया का खानदान का तीसरा खलीफा था मरवा इस्लाम का, तो उसने मरवान को अंदर कर लिया था, मदीना में बुला लिया। तो लोगों ने कहा था मरवान रसूल ने इसको बाहर किया था, दोनों ऊपर के खलीफा ने बुलाया नहीं, तूने कैसे बुलाया? उसने कहा मेरे खानदान का है, मेरे खानदान का है। जब तीसरा खलीफा बना था तो अबू सुफियान यजीद का दादा, ग्रैंड फादर माविया का बाप अंधा हो गया था, लकड़ी लेके आया, 7 लोग आए तीसरे खलीफा के सामने, पूरा दरबार भरा हुआ, देखिए एक खिलाफत कैसा हो रही, पूरा दरबार भरा हुआ, अंधा अबू सुफियान आके कहता है तीसरे खलीफा को, क्या है उस्मान, अब ये खिलाफत हमारे खानदान में आ गई, हमारी फैमिली में आ गई, अब इस खिलाफत को बॉल की तरह, गेंद की तरह से उछालो। बॉल कैसे उछलते हैं, कभी बॉल गेंद की तरह उछालो और कभी इसको दो कभी उसको दो, अब ये खान ये खिलाफत अहले बैत तक नहीं आ गई, बनी हाशिम का ये उसमें ये अबू सुफियान का ये तारीख के जुमले है, गेंद की तरह उछालो, कहता है बॉल की तरह उछालो खिलाफत को, और वही हुआ बाद में, यजीद के बाद अमीर शाम के बाद यजीद, यजीद के बाद खालिद, खालिद के बाद मरवान, मरवान के बाद अब्दुल मलिक इब्ने मरवान जो चौथे इमाम का खातिल है, फिर वहां से जो सिलसिला कमवार सुलेमान है, खालिद है। तो इस तरह ऐसे ऐसे सक्सेसर बने कि इस्लाम में आज जो पूरा हशर हुआ ना इन जालिमों की वजह से। मैं क्या करूं, 1 घंटा 10 मिनट हो गए अभी आपके ऑफिस में, बात पे ये रोकता हूं, अभी सुलेमान की निर्जात की जंग है वो कल पड़ोगा, लेकिन हालात बिल्कुल खराब हो गए। 11-25 हो गए, मैं 10-20 पे बैठा था मेम्बर। आपसे ख्वाहिश है प्लीज वक्त का सलवा पढ़े मोहम्मद बाबर। एक और पढ़ लें बहरहाल, ये सिलसिला तो चलेगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो है 9 मुहर्रम तक खत्म होगा। अभी पता नहीं क्या होगा, ना शिविर आएगा रास्ते में ना उम्र ऐसा। बहरहाल किसी एक को तो पकड़ के लाऊंगा मैं कसम, इसलिए लाऊंगा कि एक लानत मैं भी चाहता हूँ ना, और लानत से कभी तकल्लुफ नहीं करेगा। लानत से तकल्लुफ करना तो फिर ज्यादा से आशुरा मुझ पड़े, कभी नहीं तकल्लुफ करना। देखो जो हक है वो बोलना है। मुख्तार की जिंदगी के वाकयात मैं इसीलिए सुना रहा हूँ कि हमारे बच्चों में हमारे पास वो जज्बा पैदा होना चाहिए कि हम भी कुछ करें। ये नहीं, कभी खौफ नहीं करें कि हमारी महफिल है, हमारी मजलिस है, हम अपनी मजलिस में कह रहे हैं, रास्ते पे जाके नहीं करें। रास्ते पे कहना ठीक है, वो मत करें, कभी किसी के सामने मत बोले, लेकिन हम अपने घर में बैठकर चार दीवारी के अंदर अगर हम बोलते हैं तो नथिंग रॉन्ग। और कभी इसलिए कि ये खुशनकी इमाम जमाना, खुशनकी इमाम हुसैन, ज्यारत अशुरा क्या है, हर ज्यारत में है लानत। ज्यारत वाली समझ नहीं, जालिमीन में हम भी जो जालिम हम करें, जो जालिम है उस पर लानत है। तो बहरहाल मैं जालिमीन को एक को तो पकड़ के लाऊंगा इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर, इब्ने ज़ियाद और शिमर या उमर साहब को इंशाल्लाह। तो बहरहाल ऐसा ना पड़े मोहम्मद वाले, इन जालिमों ने जो जुल्म किया ना उसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा। इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि जुल्म करने वाले थके लेकिन सबर करने वाले नहीं थके, सबर करने वाले सबर करते थे। आज की तारीफ जो है पूरी दुनिया में एक शहीद का माता होता है, वो हुसैन का जवान बेटा है। 6 मुहर्रम अली अकबर से मंसूब है। ये वो गरीब गरीब हुसैन का फर्जंद, सिर्फ 18 साल का दिन है और सीने पे बर्छी खाके सो गया। शहजादे अली अकबर की शहादत जो है एक अजीब शहादत है कि जरा कोई हुसैन के दिल से पूछे कि अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन का क्या हालत हो। अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे, अल्लाह आपके बेटों को सलामत रखे। उन माओं के दिल से पूछो, लैला के दिल से कोई पूछे कि उसके अली अकबर की शहादत के बाद लैला की क्या हालत हो गई थी। अजीजों जब हुर इमाम हुसैन के पास आया था ना, तो हुर ने आगे एक जुमला कहा था कि मौला मैं आया हूं, तो हुसैन ने हुर को सीने से लगा के ये कहा था, हुर मैंने तुझे माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। तो हुर ने कहा था मौला मेरे जवान बेटे को मरने की इजाजत दीजिए। तो हुसैन ने कहा था हुर जब तू दुश्मन बन के आया था तो मेरे पास मैंने खातिर की थी, पानी पिलाया था, लेकिन आज हुसैन इतना गरीब हो गया है कि तू मेहमान बनकर आया लेकिन मेरे पास पानी भी नहीं है। तो हुर ने कहा था मौला ये छोटे छोटे बच्चों की अलतश की आवाज आ रही है ना, इसको मैं सुन नहीं सकता, मेरे जवान बेटे को अभी इजाजत दीजिए। अजीज हुर के बेटे को हुसैन ने इजाजत दी। हुर का बेटा मैदान में आया, जंग करके जब वो घोड़े से जमीन पर आया तो उसने हुसैन को नहीं पुकारा, हुर को पुकारा। जवान बेटे का मामला था, हुर तलवार लेकर मैदान में चला और ये कहता जाता था बताओ मेरा लाल कहाँ है। बेटे को कहता था बेटा एक दफा आवाज दो। हुर पुकार रहा था कि हुर के कानों में हुसैन की आवाज आई और ये कहा कि हुर इधर आ। अब जो हुसैन, हुर ने पलट कर देखा, हुसैन उसके उससे पहले उसके बेटे की लाश पे पहुंच गए और बेटे का सर जानू पे रखे जख्मों को साफ कर रहे थे। तो हुर ने हाथों को जोड़ के कहा मौला गुलाम ज्यादा है, आपने क्यों तकलीफ की। तो इमाम ने अजीब जवाब दिया, जिनके बेटे है ना अल्लाह उनके बेटों को सलामत रखे। हुसैन ने कहा हुर तू ज़ईफ है और तेरा बेटा जवान है, हुसैन ये कैसा गवारा करे कि तू अकेला चला जाए। मैं कहूँ मौला आप गुलाम के लिए इतना ख्याल कर रहे हैं, अरे जब अली अकबर ने आपको पुकारा तो किसने सहारा दिया। पहला मौका है, हुसैन ठोकरे खा रहे थे, कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे, कहते थे बताओ मेरा लाल कहाँ है, बताओ मेरा अली अकबर कहाँ है। जब अली अकबर तक पहुंचे तो खुदा किसी बाप को ये बेटे का मंजर नहीं दिखाए, जवान बेटा एरिया लग रहा था। हुसैन ने अपने आप को गिरा दिया, रुखसारे पे रुखसारा रख के कहा वलदी हुसैन आया है। अली अकबर का जवाब नहीं आया, उठे अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा, सीने के जख्म को देखा, आस्तीन को उलट के नजफ का रुख किया, सीने से यानी कहकर बच्ची निकाली। अली रो ये वो मौका था, या मैं रुक
کے جملہ آپ کو کہوں کہ جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ بیٹھے ہوئے تھے, علی اکبر اتنے حزین تھے, رسول کی شبی ہے, اس وقت کربلا کے میدان سے ایک جن جن پرواز کرتا ہوا ہوا میں جا رہا تھا, اس نے کربلا میں امام حسین کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے جا کے زعفر جن جو ان کا سردار تھا ان سے کہا کہ تم یہاں کیا بیٹھے ہوئے ہو, فاطمہ کا لال نرغے میں ہے میدان میں کھلے ہوئے ہوتا ہے. تو زعفر جنوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچا, اس نے دور سے امام حسین کو سلام کیا, حسین نے زعفر کا سلام دے کے کہا زعفر قریب آ جا, تو اس نے کہا مولا راستہ نہیں ملتا, اس وقت اولیاء ہیں انبیاء سب کی ارواح کھڑی ہوئی ہے میدان کربلا میں. حسین نے حکم دیا کہ زعفر قریب آئے, جب زعفر قریب آیا تو وہ لمحہ تھا کہ علی اکبر کا سر حسین کے زانوں پہ تھا اور حسین علی اکبر کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. زعفر نے حسین کو سلام کیا, سلام کر کے علی اکبر کو غور سے دیکھنے لگا, دیکھ کے جملہ کہا, کہا مولا یہ کتنا حسین ہے, مولا یہ کتنا خوبصورت ہے, یہ کون ہے؟ تو وہ پہلا واقعہ تھا حسین نے کہا زعفر میرا 18 برس کا سال ہے, میرا 18 برس کا بیٹا ہے, جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا. حسین علی اکبر کو لے کے خیمے تک آ رہے تھے, ابھی خیمے سے کچھ فاصلہ تھا, حسین نے علی اکبر کے چہرے پر دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیز و ضعیف باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی, اب آپ کو بچھا کے کہا بچوں آؤ, حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے باہر نکلے, حسین وایا بڑا کہتے ہوئے خیمے تک پہنچے, زینب آگے بڑھ گئی, سینے سے لگا کے کہا علی اکبر شادی کے ارمان تھے تیری لاش آئی. عزیز و جب لیلہ علی اکبر کی میت پہ آئی, روایت کا جملہ ہے کہ لیلہ بیٹے کی میت پہ گر گئی, کہا میرے لال آج یہ دن آ گیا کہ تیرا زخمی سینہ ماں زندہ ہے, میرا جوان بیٹا دنیا سے گزر گیا.
پروردگار حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ, ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے. پروردگار شہزادے علی اکبر کے حق کا واسطہ, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. علی اکبر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ پروردگار, جو جو مولا کے چاہنے والے بے روزگار انہیں روزی دے دے, جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے, جو مخلوط ہیں ان کے خرچ ادا فرمائے, امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرمائے, ادا خانوں کی حفاظت فرمائے, دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے, پرچم اسلام کو سربلند فرمائے, ہمارے جو محرومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے, اس گھر میں برکتوں کو عطا فرمائے, ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے, ان کی توفیقات میں اضافہ کر, ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے, زمانے کے امام کو سلامت رکھ, اور ہم سب کو یہ سعادت دے کہ ہم بھی جناب مختار کی طرح خون حسین کا بدلہ امام زمانہ جب انشاءاللہ ظہور کرے تو اس خون حسین کا بدلہ امام کے ساتھ میں انشاءاللہ, اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ رسول فیملی کے لیے, اپنے اپنے مرحومین کے لیے, اور حیدر بھائیاں جو کام کرتے تھے ان کے لیے بھی سنائے. الحمدللہ رب العالمین.